जोहार मित्रों, मैं नईम आजाद जयंदेश्वर उत्तराखंड धनबाद से। मुरली बीच स्पिरिट्स कोलियरी का संक्षिप्त परिचय। कोयला नगरी धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में 150 वर्ष पूर्व खनन प्रारंभ किया गया। उस समय बहुत सारी खदानें खुली, जिसमें मुरली बीच स्पिरिट्स भी उनमें से एक है। यह एक भूमिगत खदान है। बंगाल कोल कंपनी के नेतृत्व में उत्खनन के कार्य किए जाते थे। इस कोलियरी के अंतर्गत गांव मुरलीडी मोदा और शत्रुटाण है। इन गांवों के खनन कोष की स्थिति निम्न प्रकार है। भौगोलिक स्थिति, दामोदर नदी घाटी तट पर ये तीनों गांव अवस्थित है। तीनों गांव कोलियरी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है। हरे भरे जंगलों के बीच ये गांव बसे थे। जोरिया और नदियों की कलकल करती शुद्ध पानी पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होती थी। तालाब और कुओं में सालों भर पानी मिलता था। देखकर खेतों की हरियाली मंत्रमुग्ध मुग्ध हो जाता था। यहाँ की मिट्टी में अजब सी खुशबू, यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी। मिट्टी की संरचना बलुआ दुमट प्रकृति की है। यहाँ की जमीन खनिजों से भरा पूरा था। यहाँ चारों ओर पलाश, नीम, करंस, महुआ, बरगद, पीपल, बांस दिखाई पड़ते थे। शैक्षणिक स्थिति, लोगों में लिपि की ज्ञान नहीं थी, मगर इतना ज्ञान जरूर था कि अपने जरूरत की हिसाब किताब माप तोल की भाषा खूब समझते थे। यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं था, मगर वैद्य और हकीमों के गुण विकसित था। जड़ी बूटी ही हर मर्ज की दवा हुआ करती थी। राजनीतिक स्थिति, गाँव में प्रधानी व्यवस्था कायम थी। गाँव के लोगों द्वारा मासो पहान घोड़ाई का राजनीतिक स्थिति, गांव में प्रधानी व्यवस्था कायम थी। गांव के लोगों द्वारा मासो पहान घोड़ाई का चुनाव मनोनीत करते थे। सभी समुदायों के सहयोग से ही पारंपरिक व्यवस्था फल फूल रही थी। आर्थिक स्थिति, मुरलीपुरियरी क्षेत्र के लोग इतने संपन्न थे कि रोज नए बर्तन में खाते थे और रोज नए कुआं खोद कर पानी पीते थे। पशुपालन और खेती इनके आर्थिक स्रोत का मुख्य आधार था। यहाँ मुद्रा प्रचलन नहीं था। लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करके अपने जरूरतों को पूरा करते थे। यहाँ की मुख्य उपज धान, गेहूँ, मक्का, मड़ुआ, अरहर, मूंग, कुर्सी, बिरही आदि थी। ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, धानों की भूसी, गोठा, उपले का उपयोग करते थे। मकान बनाने के लिए जितने भी जरूरत चीजें थी वो गाँव से ही पूरा हो जाता था। लोगों के पास काम था। लोग कृषि कार्य में निपुण थे। मानव जीवन जीने की कलाओं में दक्षता हासिल थी। वास्तुकला सुंदर कलाकृतियां हस्तशिल्प कलाकारों की दीवारों और महलों में झलकती थी। सामाजिक स्थिति, इस क्षेत्र के लोगों में सामाजिक समरसता खूब खूब कर भरी हुई थी। यहाँ के लोग मेल जोल, आपसी भाईचारे और सामूहिकता पर विश्वास रखते थे। साथ साथ उत्सव मनाना, दुखों में भी साथ निभाना यहाँ की परंपरा में शामिल था। चलना ही इंग्लिश और बोलना ही जीत हुआ करता था। हम होते ही चौपाल सज जाते थे। भूखे पानी की रस्म जोरों पर थी। भूखों की पाइप हमें गाँव के प्रधानों का रुतबा और अंदाज निराला था। उसमें गाँव के बड़े बुजुर्ग भी खूब साथ निभाते थे। नए फसल के आगमन से मनुष्य और पशु दोनों घूमने लगते थे। मनुष्य और पशु के बीच अनुसार सामाजिक स्थिति, इस क्षेत्र के लोगों में सामाजिक समरसता खूब खूब कर भरी हुई थी। यहाँ के लोग मेल जोल, आपसी भाईचारगी और सामूहिकता पर विश्वास रखते थे। साथ का उत्सव मनाना, दुखों में भी साथ निभाना यहाँ की परंपरा में शामिल था। चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत हुआ करता था। हम होते ही चौपाल सज जाते थे। भूखे पानी की रस्म जोरों पर थी। भूखों की पाइप हमें गांव के प्रधानों का रुतबा और अंदाज निराला था। उसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी खूब साथ निभाते थे। नए फसल के आगमन से मनुष्य और पशु दोनों घूमने लगते थे। मनुष्य और पशु के बीच अनूठा प्रेम देखने को मिलता था। जितिया, कर्मा, सोहराय, टूसु, बावरी आदि यहाँ की प्रमुख पर्व हुआ करते थे। बातुरी, हाँसा, मांदर, नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीतों में लोग रोजाना घूमते थे। आंख निचोली खलिहानों में और बागों में होती थी। गुल्ली डंडा और कबड्डी मिलकर खेला जाता था। यहाँ न कोई दर्शक न कोई मर्शक था। समूह में नाचते थे, समूह में जाते थे। पारंपरिक हुनर पारंपरिक कुशलता से लग रही था। हसी खुशी के माहौल में लोगों की जिंदगी और सालों से होती थी। धन्यवाद। मैं नई मेजाज जनदीप छोटा सा धन्यवाद।